हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्री वाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा द्वारिका पुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. You could sit in front if possible. Only two. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद से अध्याय पहला महाराज प्रियव्रत का चरित्र श्लोक संख्या 12। कृपया दोहराइए। नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृत् विभूयात् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। इसका शब्दशः अर्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। न कभी नहीं, तस्य उसका, कश्चित् कोई भी, तपसा तप से, विद्यया विद्या से, वा अथवा, न कभी नहीं, योग योग बल से, वीर्येण शारीरिक बल से, मनीषया बुद्धि से, वा अथवा, न कभी नहीं, एव निश्चय ही, अर्थ भौतिक ऐश्वर्य से, धर्मै ही धर्म से, परतः किसी बाह्य शक्ति से, स्वतः अपने प्रयास से, वा अथवा कृतम आज्ञा विहंतुम टालने में, तनुभृत भौतिक देह स्वीकार करने वाला जीवात्मा, विभूयात समर्थ है। अनुवाद। भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वह भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रिया सम्मिलित है, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां निरर्थक लगती है, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवद्गीता से 7:14 भी इसकी पुष्टि होती है, मम माया दुरत्यया, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट किया कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो, यह असंभव है। यहाँ मनीषया बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनके गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक मामलों में न उलझने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे। अतः प्रियव्रत उनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के बिना करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए, यही वास्तविक बुद्धि मनीषा है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है, इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संसार मिथ्या है और केवल परम ब्रह्म ही सत्य है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी भगवान ने सृष्टि की है वो मिथ्या कैसे हो सकती है, किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है। जैसा कि भगवद्गीता 5:29 में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के लिए निमित्त है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता है, अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए, अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन कक्षा में दो उपस्थित वपुसंगी और अनेक अनुपस्थित वाणी संगी भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा जो कर रहे हैं ये विषय लगने में तो वैसे काफ़ी जटिल लगता है, लेकिन जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं और भक्तों के संग में रहते हैं तो काफ़ी आसान भी बन सकता है। पिछले पूरे स्कंद में, चौथे स्कंद के करीबन शुरुआत से ही स्वयंभू मुनि की वंश की परंपरा के बारे में बताया गया, विशेषतः उनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तान प्रियव्रत हालांकि बड़े भाई बड़े थे, लेकिन उनको राजपाट गृहस्थ जीवन में बिल्कुल रुचि न होने के कारण नारद मुनि जैसे महान गुरु के संपर्क में आने से उनमें काफ़ी विरक्ति आ गई और वो गंधमादन पर्वत चले गए तपस्या करने के लिए। और पूरा करीबन चौथा स्कंद बोलता है तो सिर्फ उत्तानपाद महाराज, उनके पुत्र ध्रुव महाराज और उनका पूरा वंश नीचे जाते 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 उनके सब एक के बाद एक सब बताते हुए बाद में जाके प्रचेता और उनके पुत्र दक्ष, जिनके 10,000 पहले पुत्रों को नारद मुनि ने प्रचार किया और फिर 1,000 और, तो दक्षों ने फिर पुत्रियों की उत्पत्ति की। तो फिर कोई पुत्र नहीं चलाने के लिए, तो स्वयंभू मुनि को जो इच्छा हुई कि राजपाट चलाने के लिए हमारे जो सबसे बड़े पुत्र प्रियव्रत जो तपस्या कर रहे हैं वो वापस आ जाए, राजपाट स्वीकार कर ले, विवाह कर ले, पुत्र उत्पत्ति करे और संसारिक व्यक्ति बनकर इस संसार के सभी जीवों को भगवत भक्ति में प्रगति के लिए मदद करे। और फिर वो भी भक्ति करते हुए ये सब चीज़ें संभाल सकते हैं। तो मुंडक उपनिषद के 3:2-3 में और कठ उपनिषद के 1:2-23 में भी एक श्लोक आता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तो इसमें कहा है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता बहुत सारे प्रवचन देकर। जैसे अभी हम एक प्रवचन दे रहे हैं तो ऐसे हजारों प्रवचन दिए जा सकते एक व्यक्ति के द्वारा, न मेधया बुद्धि के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, न बहुना श्रुते न बहुत सारे प्रवचन सुनने के द्वारा भी नहीं, प्रवचन देने के द्वारा भी नहीं, प्रवचन सुनने के द्वारा भी नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते। यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस, भगवान जिनको चुनते हैं जिनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, ऐसे ही व्यक्ति को जिनको भगवान ने चुना है, भगवान ने अपनी कृपा दी है, भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने सारे लोग कितने सारे तरीकों से प्रयास तो करते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ प्रभुपाद अपने काफ़ी सारे ग्रंथों में भगवान के आदेशों को बताते हैं हमें, जो भगवत गीता में बताए गए, और सबके ऊपर प्रभुपाद बताते हैं जो भगवद्गीता का 1866वां श्लोक कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज, सभी धर्मों का त्याग करके तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ जो 9 चीज़ें बताई गई हैं, तपसा विद्या योग वीर्यण मनीषया अर्थ धर्म परतः स्वतो, 9 चीज़ें बताई गई हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं भगवान के आज्ञा का उल्लंघन न करे। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में वो देखना चाहेंगे। पहले तो है तपस्या, न तस्यत कश्चित तपसा। तो तपस्या करने के लिए हम देखते हैं जैसे सौबरी मुनि थे, कितने साल उन्होंने यमुना के पवित्र जल में नीचे तल पे रहते हुए तपस्या तो की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्योंकि उनकी जो भगवान के बारे में संकल्पना थी वो गलत थी। यमुना के पवित्र जल में पूरा शरीर था। हम तो कभी कभी जाके साल में 2 साल में जाके कभी डुबकी लगाते, अपने आप को धन्य मानते, वो तो पूरा जल में ही पूरी तरह से थे। इसके बावजूद भी पवित्र होने की बजाय वहां ही 2 मछलियों का जो शारीरिक संपर्क हुआ उनके कारण उनके मन में काम वासना इतनी प्रवृत्त हो गई कि बाद में जाके उन्होंने मानता था कि 50 लड़कियों से विवाह किया और उसमें ही वो सांसारिक जीवन में पूरी तरह से दूर विमुक्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज का हमारा शीर्षक है भगवान की आज्ञा। भगवान की आज्ञा क्या है? मुझे शरण आ जाओ। और मुझे शरण कैसे आना है वो भी बताया है, भक्तों के माध्यम से। और भगवान के खुद के महान भक्त वाहन गरुड़ जी के ऊपर जो भगवान सवार होकर प्रवास करते हैं, ऐसे गरुड़ जी के प्रति सौबरी मुनि ने उन्होंने अपराध कर दिया था। जैसे सौबरी मुनि गरुड़ जी अपने खाद्य मांस मछली को लेते थे वहां से, तो जो मछलियों ने उनसे संपर्क किया सौबरी मुनि से कहा कि हमें तकलीफ होती है गरुड़ जी से, तो उन्होंने गरुड़ जी को शाप ही दे दिया, यहाँ फिर से आएंगे तो बस खैर नहीं, फिर हमसे मुकाबला होगा। तो गरुड़ जी तो नम्रता से वहाँ आए नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं कि सौबरी मुनि का यह हो गया, पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। विद्या, विद्या के रूप में भी जैसे सार्वम भट्टाचार्य, ये वैदिक विद्या में बहुत पारंगत थे, बहुत निष्णात पंडित थे, सब जगह पे उनका नाम था, मिथिला में वो नाम मशहूर है, सब जगह पे मशहूर थे। और जब भगवान चैतन्य महापुरुष संन्यास लेकर जब आए वो जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने ये सोचा कि इतना जवान 24 साल का सन्यासी इतना सुंदर, हाँ कहीं उसका पतन न हो जाए, तो मैं इसको वेदांत सूत्रों में बताकर इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ जिसके ऐसा पतन न हो। तो 7 दिन लगातार वो बताते रहे उनको, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, वो चैतन्य महापुरु ने उनको फिर सुधारा, बताया कि कैसे वेदांत के जो सूत्र है वो तो दिन का जो सूरज है उसके समान स्पष्ट है, लेकिन आपकी जो उसके ऊपर परिभाषा है, टीका है, ये तो सब उसको जो बादल होते हैं जैसे ढक देता है सूरज को वैसे है। तो बोले आप ऐसे क्या समझते हो अपने आप को, तो आप बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतना सुंदर बताया वेदांत सूत्रों का विवरण, तो वो पूरी तरह से पराजित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गए। तो हम विद्या के द्वारा भी भगवान को, अपनी विद्या के द्वारा भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरा है न योग, तो योग यानी मिस्टिक पावर्स, बहुत सारी योग सिद्धियां होती, जैसे दुर्वासा मुनि कितना योग बल था उनका, उन्होंने अम्बरीश महाराज के ऊपर जो अपने बालों को उखाड़ कर एक कृत्या उत्पन्न की, एक फायरी डीमन, और छोड़ दिया, तो वो तो कुछ नहीं किया इनको अम्बरीश महाराज को, लेकिन अम्बरीश महाराज के बाद वो कृत्या उनके ऊपर ही हमला करने लग गया, वो तो जल गया, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो उससे बचने के लिए ये दौड़े ब्रह्मलोक, फिर दौड़े शिवलोक, और फिर दौड़े वैकुंठ तक, नारायण जी से उनकी बात हुई, लेकिन नारायण जी ने कहा नहीं मैं भी आपको बचा नहीं सकता, भगवान पूरे संसार को चलाते सबको बचाते, बोले मैं नहीं बचा सकता, मुझे आप तभी शरण आ सकते हो जब मेरे भक्त आपको माफ करे, अम्बरीश के चरणों में आपने अपराध किया है, जाइए उनके चरणों में गिड़गिड़ा के माफी मांगिए। तो उनको वापस आना पड़ा, इतना योग शक्ति बल, हम लॉकडाउन फ्री होने के बाद भी शायद ब्रह्मलोक ना जा पाए, फ्लाइट तो चल रहे 25 से, तो ब्रह्मलोक की फ्लाइट नहीं मिल रही हमें, न तो शिवलोक वैकुंठ तो दर ही दूर की बात। तो हम देख सकते कि इतना योग बल, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। वीर्यण, अपनी शारीरिक शक्ति से, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में स्थित थे तो कंस ने उनको मारने के लिए कितने शक्तिशाली असुरों को भेजा, हाँ पूतना, जब भगवान सिर्फ 3 महीने के 6 दिन के थे वगैरह, बाद में तृणावर्त, शक्तासुर, एक से एक शक्तिशाली, हाँ जिनके सामने, जैसे तृणावर्त थे, आंधी तूफान, तूफान क्या, तृणावर्त, तृण आवर्त, जब एक तृण होता है घास का तिनका, जिसको घूम 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 करके जो घुमाते रहे, ऐसा जो बादल, जैसा जो तूफान आता है उसको तृणावर्त कहते हैं। हमारा जो उस दिन आया था परसों का, उससे बस हमारा ये प्रभुपद का बुक का शेल्फ ही नीचे गिर गया स्टेयर केस पे, और तुलसी महारानी का पूरा ऊपर से 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया। ये तूफान तृणावत के सामने कुछ भी नहीं, उसका एक इतना भी फूक नहीं उसका, हाँ तृणावत बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान ने इतने छोटे से काना थे, 1 साल के सिर्फ, और भगवान ने जो पकड़ा उनको, तो ऐसी गर्दन पकड़ी, उसको समझ में आया मेरी तो जान ही चली जाएगी, तो भगवान को फेंकना चाहता था, लेकिन भगवान एक किसी को पकड़ लिए, उनको छोड़ना आता नहीं, तो छोड़ा ही नहीं उसको, और फिर बेचारा ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे जमीन पे गिरा, और फिर उसका मृत्यु हो गया, उसका भी पतन हो गया, क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। मनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा, जैसे केशव काश्मीरी आए थे नवद्वीप में, इस उद्देश्य से कि नवद्वीप के सभी विद्वानों को हम हरा देंगे, और पता चला कि निमाय पंडित, जो खुद कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक बचपन में एक पंडित के रूप में, निमाय पंडित के रूप में थे, तो उनसे वो वाद विवाद करने लगे, तो वो कहे विद्वान हमारे केशव निमाय पंडित, हम क्या आपके सामने, हम तो एक छोटे से व्याकरण के शिक्षक है, आपके सामने कुछ भी नहीं, तो आप क्यों ना गंगा के ऊपर कुछ श्लोकों की रचना करो। तो वहीं पे वही उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की, कुछ याद करके नहीं आए थे ना कुछ बनाया था पहले, 100 श्लोकों की रचना करने के बाद कहा आपका क्या कहना है, बोले अच्छे हैं श्लोक, सिर्फ उसमें 5 गुण है और 5 दोष है। तो हैरान हो गए, 5 गुण तो ठीक है, 5 दोष, मैं इतना विद्वान पंडित हूं, समाज पूरे दुनिया के सभी विद्वानों को मैंने हरा दिया है, विजय पत्र मेरे साथ में है, आप क्या कहते हैं 5 दोष, मेरे इसमें रचना में दोष हो ही नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित ने बताया कैसे आपने भवानी भर्तृज शब्द इस्तेमाल किया है, भवानी यानी भव की पत्नी आप पार्वती, भवानी भर्तृ उसके पति जो भव की पत्नी है, शिवजी की पत्नी है, यानी शिवजी की पत्नी पार्वती के शिवजी के अलावा किसी और से भी संबंध है ऐसे उसका उल्लेख होता है, जो आप सती पार्वती को आप पूरा उल्टा जैसे ये कर रहे हो तो ये बड़ा दोष है, आपने देवी का भी अपराध किया है। तो वो डर गए पूरा और पूरा परास्त कर दिया उनको, क्योंकि भगवान को कोई अपनी मनीषा अपनी बुद्धि के द्वारा भी परास्त नहीं कर सकता। और फिर अपने अर्थ के द्वारा, जैसे दुर्योधन थे, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बुलाया, आइए 56 भोग बनाया आपके लिए, पूरा घी में, देसी गाय का, शुद्ध गाय का देसी घी या देसी गाय का शुद्ध घी, जो भी है दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आइए। तो भगवान बोले दो ही मामले में व्यक्ति किसी का इनविटेशन स्वीकार करता है, आमंत्रण, अगर भूख लगी है तो जाएगा, नहीं तो कोई प्रेम से बुलाए, भूख भी नहीं है खाया भी है तो भी जाएगा, ना तो आपको मुझे भूख लगी है ना तो आपको मेरे प्रति प्रेम है तो मैं नहीं आऊंगा आपके पास। और गए तो किसके पास गए, विदुर जी के पास गए। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखे शाख विदुर घर खायो। तो भगवान का ये गुणगान बताया गया है ना, ऐसे प्रेम पुजारी को, प्रेम के पुजारी है वो, ऐसे किसी के खाद्य के भूखे नहीं है वो, मैंने भिखारी नहीं है भगवान, पुजारी है। किसकी पूजा करते हैं, प्रेम की। जिस किसी को भगवान के प्रति प्रेम है उसको उसके प्रति भगवान का प्रेम है। तो विदुर जी को इतना प्रेम, उनके घर गए, उनके घर में क्या, उनकी पत्नी ने उनको केले ही थे और गलती से प्रेम के कारण केले खिलाने के बजाय उसके वो पिल्स उसका छिलका ही खिला दिया, लेकिन भगवान तो बड़े प्रेम से खाए। तो अर्थ के द्वारा भी भगवान को जीता नहीं जा सकता, न धर्म के द्वारा। ऐसा एक बताएं, एक स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवम उपासते, स्वमातरम परित्यज्य स्वपचिम वंदते ही सह। वासुदेवम परित्यज्य, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण को छोड़कर त्याग कर यो अन्य देवम उपासते, अन्य देवताओं की उपासना करता बैठेगा कोई, इंद्र चंद्र वायु वरुण गणेश इत्यादि, तो स्वमातरम परित्यज्य, उदाहरण बता रहे अपनी माता को छोड़कर, ये कैसे है, जैसे अपनी माता को छोड़कर स्वपचिम वंदते ही सह, वो एक चुड़ैल की आराधना कर रहा है, चुड़ैल के सामने झुक रहा है, या स्वपचिम कुत्ते खाने वाली स्त्री को वंदना कर रहा है। कहा कुत्ते खाने वाली स्त्री एक तरफ, और अपनी खुद की माँ जो हमें प्रेम से खिलाती है, कितनी आदर्श होती है हमारी माँ, तो कहा क्या उदाहरण बताया गया। तो धार्मिक स्तर पे लोग कितने सारे देवताओं की पूजा पाठ करते बैठते हैं, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये गुरुवार, तो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ऐसे धर्म के द्वारा भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अर्थात जैसे उस दिन श्रीमद् राधेश्याम प्रभु ने बताया कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, थोड़ा बुद्धि कम होने के कारण, भगवान की ही अंततोगत्व जाके सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो देवताओं की सेवा का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से धर्म के द्वारा भी नहीं, परतः दूसरों के द्वारा भी व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे दुर्योधन ने इतना 11 अक्षौणी सेना उपस्थित खड़ा कर दिया पांडवों को हराने के लिए, लेकिन पांडवों की सेना हालांकि 7 ही अक्षौणी थी, कम थी काफी, 4 अक्षौणी कम थी, लेकिन फिर भी वो परास्त हो गए। और जरासंध भी हर बार करीबन 23 अक्षौणी सेना को लेके आता था भगवान कृष्ण के मथुरा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन एक बार भी वो भगवान को परास्त न कर पाया, उल्टा भगवान ने उसको हर बार पराजित कर दिया, सभी 23 अक्षौणी सेना को परास्त कर दिया, सबको मार गिरा दिया, यहां तक कि भगवान जरासंध को भी मार सकते थे, लेकिन कुछ और भी भगवान की योजना थी। तो हम देख सकते 17 बार लगातार वो आए जरासंध, लेकिन परतो इतने सारे महान शक्तिशाली राजाओं की सहायता से वो भगवान को, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए, स्वतः खुद के भी बलबूते पर। जैसे जरासंध खुद बाद में जाके जब राजस्व यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज को, तो उसके लिए सभी राजाओं को स्वीकार करना होगा उनका अधिपत्य युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन यह तो जरूर साबित था कि जरासंध नहीं स्वीकार करेगा, और जरासंध को ऐसे युद्ध में परास्त करना मुश्किल है, उसको द्वंद्वों में ही परास्त किया जा सकता है, द्वंद्व युद्ध में। तो इसलिए फिर कृष्ण अर्जुन और भीम तीनों रूपांतर करके ब्राह्मण के वेश में जाते हैं मगध देश में, और जरासंध के जब वो दान दे रहे होते हैं तो एक के बाद एक जब इन तीनों की बारी आती है तो कहते हैं कि हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। बोले आप कैसे ब्राह्मण है कि जो युद्ध करना चाहते हैं, ब्राह्मण तो कभी युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखते। बोले नहीं हम है तो ये अर्जुन है और ये भीम है और मैं कृष्ण हूं, तो चुन लो हम तीनों में से एक और हम युद्ध करेंगे आपसे तीन में से एक। तो बोले कृष्ण तुम तो कायर हो, तुम भागते रहते हो और तुम वैश्य भी हो, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अरे अर्जुन तो मुझसे छोटा है, ये भी नहीं काम का। ये भीम थोड़ा अपनी बराबरी का है, बड़ा शक्तिशाली भी है। तो भीम को चुना उन्होंने और भीम के साथ युद्ध करते रहे, यहां तक कि भीम भी काफी दिनों तक लड़ने के बाद भी उनको परास्त नहीं कर पाए, तो भगवान के शरण गए, क्योंकि भक्त भगवान के अधीन रहते हैं। तो बोले कृष्ण मैं इनको परास्त नहीं कर सकता, अरे ये ऐसा युद्ध पता नहीं सालों साल, लॉकडाउन भूल जाए लेकिन हमारा युद्ध चलता रहे तो क्या करे, मैं लॉकडाउन हो गया हूं उनके साथ युद्ध में। तो भगवान बोले ये जरासंध है, इसका जन्म ही हुआ था जब माँ के गर्भ से दो टुकड़ों में हुआ था, और जरा नाम की जो एक कृत्या थी उसने उसको जोड़कर संधि बनाकर इसको बनाया था, एक बच्चा बनाया था दो जो भागों में था। तो ये जरासंध है, तो इसको अन्य किसी तरीके से मारा नहीं जा सकता, इसको तुम बस ऊपर से नीचे तक फाड़ डालो, दो टुकड़ों में विभाजित कर दो और उल्टा फेंक देना, फिर वो कभी चिपक नहीं पाएगा। तो फिर वैसे ही भीम ने किया और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि जरासंध भी मारे गए। तो तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, योग के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अर्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा, दूसरों की सहायता से या खुद के बलबूते पर व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। तो ऐसे ये यहां बता रहे ब्रह्मा जी प्रियव्रत को। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। पूरा जो संसार चलता है भगवान के आधिपत्य में चलता है, मम माया दुरत्यया, पूरी ये जो भौतिक प्रकृति है उसमें जीवात्मा है, और हर जीवात्मा वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, 84 लक्ष योनियों में से, तो वो उसको भगवान के नियमों के अनुसार ही चलना होता है, अपने नियम नहीं बना सकता, भगवान की आज्ञा के अनुसार। जैसे जीव जाती है प्राणी वगैरह, तो वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन वो बराबर भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करते हैं। आहार जैसे है तो एक गाय भूखी कितनी भी क्यों ना हो मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, और एक शेर भूखा कितना भी हो मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपने नियमों के अनुसार चलते हैं, कोई शाकाहारी प्राणी कोई मांसाहारी प्राणी। लेकिन एक मानव है जो इसमें गलतियां करता है, या सोना भी है वो बराबर टाइम पे सोते हैं टाइम पे उठते हैं, लेकिन मानव लोग गड़बड़ कर देते हैं। और मैथुन भी है जैसे शेर जैसा भी है, तो साल में एक ही बार ही वो जो उसकी जो शेरनी वगैरह है उसके साथ संबंध रखता है, और बाकी 364 दिन वो सोचता भी नहीं उसके बारे में। लेकिन मानव अपने मैथुन में पूरा दुराचार कर देता है, और वैसे ही हिंसा में भी, हर निद्रा भय में भी वैसा ही है। तो जानवर है वो बराबर भगवान के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन जो मानव है नियमों को नहीं मानते तो फिर उनके जीवन में समस्या आ जाती है। अविद्या के कारण भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान के नियमों को जानते ही नहीं, फिर तोड़ना हो जाता है, तोड़ने के कारण पाप बन जाता है, पाप के कारण उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है, दुख आ जाते हैं, भ्रम हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, और फिर व्यक्ति और हताश हो जाता है। जैसे ये लॉकडाउन, भगवान ने लॉकडाउन किया है क्योंकि मानव बहुत बड़ी मात्रा में इधर उधर घूम के बहुत अधिक पाप कर रहा था, तो ऊपरी रूप से गवर्नमेंट के द्वारा जो भगवान के आधिपत्य में है भगवान ने लॉकडाउन किया है जिससे कि पाप थोड़ा कम हो जाए, और कभी फिर उस गवर्नमेंट के अंदर जेल में डाला जाता है कैदी जो गुनहगार है, जो सरकार के नियम को तोड़ा है जिसने, या भगवान के नियम है जो सरकार के द्वारा आए हैं तो तोड़ दिया, या कभी बीमारी हो जाती है व्यक्ति हिल नहीं सकता एक जगह से, या ज्यादा चल नहीं सकता, या कभी फिर बुढ़ापा आ जाता है, जवानी में बहुत पाप किए तो फिर बुढ़ापे के द्वारा उसको थोड़ा सा एक जगह पे पकड़ा जाता है, या घुटनों का दर्द ये वो, और अंततः अथवा डेथ बहुत ही ज्यादा हो गया तो भगवान उसको मृत्यु रूप से उस शरीर से निकाल देते हैं। इस तरह से भगवान जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर भी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि उस शरीर में रहकर वो बहुत पाप करते हैं, तो भगवान उनको मृत्यु रूप में आकर उनको उस शरीर से बाहर कर देते हैं। तो वो लोग बराबर भगवान के जो जानवर वगैरह हैं भगवान के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन मानव उसमें समस्या कर देता है तो उसके कारण उसके जीवन में समस्या आ जाती है। तो बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है, लेकिन ये बुद्धि भी है इसको जैसे कहते हैं लस्टी इंटेलिजेंस, कामुक बुद्धि। तो एक जीवात्मा है जो बद्ध है तो उसकी बुद्धि भी कामुक होती है, मेरी इंद्रिय तृप्ति किसमें है, मैं कैसे सुखी हूं, तो इस भावना से वो अन्यों के ऊपर अत्याचार भी शायद कर बैठे। इसलिए भगवद्गीता में 3:40 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहति विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। जो काम है किस तीन जगहों पर बैठा है भगवान बता रहे, अगर कोई काम वासना से परावृत्त होना चाहता है तो इंद्रियाणि, इंद्रियों के बीच में काम है, इंद्रियों के अंतर्गत मन में और बुद्धि में, अस्य अधिष्ठानम उच्चते, ये तीन जगह है जहां काम अपने आप को स्ट्रैटेजिक पोजिशन प्रोपात कहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में स्थित किया हुआ है। और इस द्वारा एतेर विमोह हयति एष, ये जीवात्मा को पूरी तरह से विमोहित कर देता है, ज्ञानम आवृत्त देहिनम, एक जीवात्मा का जो ज्ञान है ढक देता है। तो यह कामुक बुद्धि हुई, लेकिन यहां जो बुद्धि बताई गई है मनीषा, मनीषा यानी बुद्धि, और ये कौन सी बुद्धि है, ये बुद्धि योग है, ये भौतिक बुद्धि नहीं जो कामुक बुद्धि है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है जिसका इस्तेमाल करना है महाराज परिव्रत को। जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, जो मेरी सेवा में हमेशा सतत नियुक्त है, तेषां सतत युक्तानां, और किस तरह से क्वांटिटी हो गया क्वालिटी, प्रीति पूर्वक भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान प्रेम पुजारी तो भक्त भी प्रेम के पुजारी, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप ही भगवान है, तो ऐसे प्रेम पुजारी के जो पुजारी है, ऐसे भक्त प्रेम से जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं खुद उनको बुद्धि देता हूं जिस तरह से वो भगवान के पास वापस आ जाए। तो ये बुद्धि वो योग है, तो इसको इस्तेमाल करना होगा भक्तों को, और ये भक्तों के लिए भी जारी है, हालांकि भगवान की सेवा में तो लगते हैं भक्त, लेकिन भगवान की सेवा में भी बुद्धि लगेगी, जो कामुक बुद्धि नहीं हो सकती, विशेषता अगर शुरुआत से भक्ति नहीं की है, बट माता पिता ने गर्भाधान संस्कार नहीं किया है और 5 साल की उम्र से भक्ति शुरुआत नहीं की है, तो सांसारिक जीवनों जीवन में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए व्यक्ति की बुद्धि हो सकती है कामुक बुद्धि हो गई, तो ऐसी स्थिति में जब भक्ति में पदार्पण करे कोई, तो उसकी कामुक बुद्धि उसको कैसे भक्ति में भगवान को इस्तेमाल कर खुद की इंद्रिय तृप्ति की जाए एक इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, तो वो बुद्धि भी बहुत खतरनाक है, वो कामुक बुद्धि है, तो वो बुद्धि नहीं चलेगी। लेकिन भगवान की सेवा करने में वो बुद्धि योग की जरूरत है, वो मनीषा की जरूरत है। जैसे प्रभुपाद खुद उदाहरण, यहाँ अन्य जगह पे शास्त्रों में उदाहरण दिया है, जैसे जब द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे युद्ध होने के बाद, तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र ने उनको सोते हुए ही उन 5ों के गर्दन काट कर दुर्योधन को उपस्थित किए थे, तो दुर्योधन तो खुश नहीं हुआ। तो जब अर्जुन को पता चला कि हमारे पुत्रों को यह किया है, इन्होंने मार दिया है, तो वो तुरंत अपने धनुष बाण लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े, और कृष्ण की सहायता से उन्होंने पकड़ तो लिया अश्वत्थामा को, और कृष्ण ने कहा तुरंत मार डालो इसको, यात ताइन है, हाँ इन्होंने अत्याचार किया है, निहत्ते छोटे बच्चों के ऊपर उन्होंने उन्होंने हत्या कर दी है, सोते हुए वो भी, ये कायर है, ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार इसके गुण नहीं है, तो मार डालो इसको। तो अर्जुन थोड़े से द्विधा में थे, तो वापस आ गए थे, और आने जाने के पहले उन्होंने द्रौपदी को आश्वासन दिया था कि ये तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को मैं पूरे मार डालूंगा करके, तो वापस तो लेके आए, तो द्रौपदी के सामने जब उस बंधे हुए स्थिति में इनको अश्वत्थामा को डाला गया, तो वो स्त्री होने के कारण उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे इनकी माँ, अश्वत्थामा की माँ कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, उनको कितना दर्द होगा अगर हम इनको मार डालेंगे, मैं पहले से ही मेरे 5 बच्चों की जिन्होंने हत्या की है मैं कितना दुख भोग रही हूँ, तो वो भी एक स्त्री है, वो भी एक माँ है, वो कितना दुख भोगेगी, तो इसलिए इसको मत मारो, हाँ ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य जो आदरणीय है उनके पुत्र है, तो कृपया इनको मत मारो। तो अभी अर्जुन सोच में रह गए, है ना, और युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा हाँ हाँ ये बराबर कह रही है द्रौपदी, इनको मारना नहीं चाहिए, और फिर बाकी सब भी सहदेव नकुल, यहाँ तक कि कृष्ण भी कहे हाँ हाँ वगैरह वगैरह, तो फिर अभी और भीम ने दिखा रही है क्या चल रहा है, हाँ ये उचित नहीं है, हाँ ये तो सहन नहीं हो सकता, वो तो आग बबूले हो गए, कोई नहीं तो मैं ही कर देता हूँ सब काम वैसे, तो बोले नहीं इसको तो मारना ही चाहिए। तो अर्जुन ने सोच समझ कर, अभी मनीषा अपनी बुद्धि योग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, उनको जान से नहीं मारा जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव और द्रौपदी सबके इच्छा पूर्ति हो, और मार भी डाला, क्या किया उन्होंने, उनके बाल मुंडवा दिए, अपमान कर दिया, और उनका जो मणि था उनके सर पे जिसके साथ उनका जन्म हुआ था उसको निकाल दिया, उसके कारण उनको बहुत तकलीफ होती थी, तो इस तरह से उनको मारा भी नहीं लेकिन मार भी डाला। तो इसमें बुद्धि की जरूरत होती है। अच्छा हम बोलेंगे हम तो क्षत्रिय नहीं, हमें किसी का मणि निकालना नहीं है, बाल खुद के बाल निकालेंगे, मुंडन करेंगे, दूसरों के नहीं निकालने, तो लेकिन फिर भी जब सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो ऐसी स्थिति में हर किसी भक्तों को काफी बार महसूस करना होगा, जैसे चौराहे पे व्यक्ति पहुंच जाता है या दो रास्ते जा रहे, ये
क्या वो हाँ किस रास्ते को चुनो, चौरा में तो चार रास्ते जा रहे हैं, कहाँ जाओ, इसको पकड़ो तो यहाँ जाओ वहां जाओ, तो भगवान की तरफ ही जाना है प्रियव्रत महाराज को। और नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारी बनो, और ब्रह्मचारी बने थे हजारों लाखों सालों से, हाँ कितने साल हो गए होंगे, क्योंकि खुद ध्रुव महाराज जी 36,000 साल राज्य किए थे, हाँ और फिर उसके बाद भी कितने सारे पीढ़ियां हो गई, तो अभी ये होंगे पता नहीं कितने 2-3 लाख साल के, हाँ तो अभी विवाह भी करना है तो इनके लिए 2-3 लाख साल उम्र वाली कहाँ से लड़की मिलेगी। लेकिन वो समस्या नहीं रहती थी क्योंकि वो जवान है और सब बूढ़े नहीं होते थे, खांसते खांसते ऐसे वो शादी में खड़े होने वाले दूल्हे नहीं है, वो बहुत जवान मजबूत ताकत शक्तिशाली है वो, तो लड़की मिलना कुछ सवाल नहीं उनके लिए, पत्नी मिलना तो मिली, दो पत्नियां मिली, शुक्राचार्य की पत्नी बेटी ऊर्जस्वती वगैरह, और बहुत अच्छे बच्चे भी पैदा किए उन्होंने, तो वो समस्या नहीं है नारद मुनि को समझाने के लिए। और यहाँ स्वयंभू मनो कह रहे हैं कि आपको शादी करना है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है, ये विवाह नहीं करना चाहते, ये अच्छा मार्ग है वैराग्य का। तो प्रभुपाद को तात्पर्य के पूर्व बताए थे कि दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग जैसे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति एक प्रामाणिक लड़की से विवाह कर शादीशुदा होकर उस पत्नी के साथ बच्चे पैदा करके अपने व्यवसाय को प्रामाणिकता से करते करते आगे जाके भगवान के बारे में सेवा पूजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा निवृत्ति मार्ग है, जैसे ब्रह्मचारी लोग या वानप्रस्थ या सन्यासी लोग चुनते हैं, तो दोनों उचित है। तो लेकिन ये है किस स्तर पे, ये भौतिक स्तर पे है, ये शरीर और मन के स्तर पे है। जैसे किसी के मन में इच्छा होती है कि अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह खाए वगैरह, तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ बनना ही अच्छा है, क्योंकि पत्नी फिर वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पण करके खिलाएगी, फिर बीच में भगवान आएंगे जरूर तो उनके बिना नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और जो ब्रह्मचर्य है उसको क्या, शाक मूल फल जो मिला वो, कुछ नहीं मिला तो हवा अजगर वृत्ति, ऐसे शायद हो सकते हैं कुछ विरक्त लोग, तो वो ब्रह्मचारी बनकर या वानप्रस्थ, जिनके जीवन में वानप्रस्थ जीवन बहुत ही कठिन है, तपस्या का इतना प्राधान्य है उसमें, व्यक्ति लोग सुन के भी डर जाएंगे, जो वैदिक वानप्रस्थ है वो, इस्कॉन में वो बहुत आसान है, इस्कॉन के मंदिर में जाओ और भगवान की सेवा करो। और सन्यासी जीवन भी यानी सिविल डेथ, बहुत यानी मर गया वो व्यक्ति सांसारिक जीवन के लोगों के लिए, वो जिदा जैसे वो जीता जागता मुर्दा चल रहा है, ऐसे लाश जैसे चल रही है, लाश कैसे चल सकती है, नहीं उनका इस संसार में तनिक भी कुछ लोभ नहीं, विषय वासना के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं, ना तो अंदर से और वही बाहर से भी दिखाई देता है, उसको किसी में भी किसी भी भौतिक चीज में बिल्कुल रुचि नहीं, कितना भी प्रयास करो उसमें रुचि उत्पन्न की नहीं जा सकती, ऐसे सन्यासी लोग। तो दोनों प्रकार के मार्ग हैं, तो किसको स्वीकारा जाए, यहाँ तो प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मचारी के रूप में जी रहे थे और इनको बताया जा रहा है कि नहीं आप गृहस्थ बनो, राजपाट स्वीकार करो, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, वही ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि डिटैच्ड वर्कर, एक तो है अंदर से इच्छा होने के कारण बाहर से भी शारीरिक रूप से वो इच्छाओं को प्रामाणिक ढंग से वेदों के अनुसार गुरु के निर्देशन में गृहस्थ जीवन में ये करे, या दूसरों मन में कुछ इच्छा है नहीं, भौतिक इच्छा है, बस भगवान की भक्ति करते रहो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के रूप में, तो भी उचित मार्ग है। लेकिन जब ऐसी कुछ द्विधा आ जाए जो यहाँ आई हुई है, बड़ी समस्या जैसे दिख रही है, तो यहाँ तक कि तीन महाजन घेरे हुए हैं प्रियव्रत को, एक तरफ महाजन है नारद मुनि जिन्होंने उनको ब्रह्मचारी बनने के लिए बड़ी प्रेरणा दी थी और लाखों सालों से वो ब्रह्मचारी बने हुए, और दूसरी तरफ स्वयंभू मनु है जो उनके ही पिताजी है, आदर्श नेक एकदम ब्रह्मा जी के पुत्र है, बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा की है, वो बोल रहे नहीं बेटा विवाह कर लो, राजपाट स्वीकारो वगैरह, और ये दोनों का जो चल रहा है इसके बीच में कुछ उपाय नहीं निकल रहा है, तो फिर ब्रह्मा जी खुद आ गए तीसरे महाजन ब्रह्मा जी, और वो बता रहे हैं कि ये न तो नारद मुनि न स्वयंभू मनु या मेरी इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है कि तुम विवाह हो करके तुम राजपाट स्वीकार करो। तो ये भगवान की इच्छा है, ये ब्रह्मा जी खुद आके बता रहे। हम कहेंगे कि हमारे जीवन में कैसे समझे, जैसे कि द्विधा काफी बार आ जाती है, यहां तक कि परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज को भी संन्यास लेने को कहा गया था, वो तो ब्रह्मचारी थे ही, उनको कहा था उनके टीचर ने कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने कि आपको संन्यास लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद की संस्था को बढ़ाने के लिए सन्यासियों की जरूरत है। बोले नहीं 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 संन्यास तो मैं नहीं ले सकता, है ना, मुझे नहीं चाहिए संन्यास, क्योंकि फिर काफी ये है रूल्स एंड रेगुलेशन, काफी नियम बढ़ जाते हैं वगैरह, बहुत कुछ मुश्किल है वगैरह, और बहुत आदर देते लोग, जहां जाए सन्यासी सब झुकते रहते, तो नहीं चाहिए हमें वो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रभुपाद की संस्था को बढ़ाने के लिए आपको संन्यास लेना ही होगा। तो उनके बहुत पीछे पड़ गए। बोले नहीं कल अभी बहुत ही जल्दी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो ये मान ही नहीं रहते। तो राजा राधानाथ महाराज कहे कि ठीक है हम लेंगे, लेकिन हम लेंगे प्रभुपाद आविर्भाव दिन को, जो बहुत दूर था। तो बोले नहीं नहीं वो बहुत दूर है, रामनवमी कल है, कल लेना है संन्यास। बोले नहीं नहीं हम तो प्रभुपाद आविर्भाव दें। बोले नहीं वो बहुत दूर है, उसके पहले का बताओ। तो बोले ठीक है जन्माष्टमी। बोले वो तो एक दिन पहले ही है, वो तो उसमें क्या बड़ी बात, इतना कहाँ प्रिपोन कर रहे हो। बोले नहीं कल अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, उस दिन लेना है संन्यास। बड़ी लंबी कथा है, महाराज खुद अपने शब्दों में बताते हैं एक प्रवचन में। तो फिर महाराज मान ही नहीं रहते, लेकिन अंततोगत हुआ, उनको स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि उन्होंने कहा कि न तो मैं कह रहा हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे द्वारा, लेकिन सभी जो GBCs है वो कह रहे हैं कि आपको संन्यास लेना ही है, प्रभुपाद की संस्था को इसे अच्छे बढ़ा सकते हैं। तो फिर ब्रह्मचारी थे, आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में जीवन जी रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन संन्यास उनकी इच्छा हो ना हो, अर्थात मान वगैरह की इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं लेना चाहते थे। तो लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी तरफ हम देखते प्रभुपाद जो छोटे थे, यानी जवान थे, करीबन 20-21 साल के, तो उनके विवाह की बात हुई तो उनके पिताजी गौरमोंडे और माता रजनी ने और अभय चरणे, दो तीनों ने जाके लड़कियों को जैसे देखते तो देखा उन्होंने, तो दो लड़कियों को देखा, तो उसमें से जो राधा रानी दत्त थी उनके पिताजी और माताजी को अच्छी लगी, तो उनके साथ उन्होंने सोचा कि ये अच्छी लड़की है, इनके साथ विवाह तय कर देते। अभी तक उनको नहीं बताया था उस पार्टी को, इन्होंने अंदर ही अंदर घर में तय कर लिया। और प्रभुपाद के कानों में ये बात आ गई कि वो वाली लड़की राधा रानी दत्त से मेरी विवाह करने वाले हैं। तो वो अपने पिताजी से एकांत में जाके कहते हैं कि पिताजी वो राधा रानी दत्त से वो जो दूसरी वाली लड़की है वो और अधिक सुंदर है, क्यों ना उसके साथ शादी की जाए। तो एक लड़के को सुंदर लड़की से विवाह करना, क्योंकि जीवन भर रहना है, अच्छा लगता होगा। तो फिर उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया, तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं अगर तुम उससे विवाह करोगे तो तुम्हारी जो आगे की जो आध्यात्मिक प्रगति है उसमें रुकावट आ सकती है, जो राधा रानी दत्ता जो इतनी सुंदर नहीं है, तुम्हें इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसके साथ विवाह करोगे तो भविष्य में तुम्हारी जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। जब 50 साल की उम्र के बाद जब तुम भक्ति में अगर अधिक प्रगति करने के लिए वानप्रस्थ बनना चाहो तो ये काफी लाभदायक रहेगा। लेकिन ये सुंदर स्त्री के साथ, लड़की के साथ विवाह करोगे तो हो सकता है तुम्हें विवाह से, यानी 50 साल के बाद बाहर ना आने की ही, उसके साथ ही रहने की, इनके साथ जीना इनके साथ मरना ऐसा ना हो जाए। भगवान के लिए जीना और भगवान के लिए मरना ये होना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने सोचा ये बहुत ही अच्छा है, मेरे भविष्य के आध्यात्मिक प्रगति के हेतु मेरे पिताजी कितने सोच समझ कर मेरा विवाह कर रहे। तो प्रभुपाद ने वैसे ही किया, तो भगवान की आज्ञा थी, इसी कारण प्रभुपाद ने हालांकि उस सुंदर लड़की से विवाह करने के बजाय कि दूसरी इतनी सुंदर नहीं थी उनसे विवाह किया। तो थैंक्स टू दैट माताजी जिनसे प्रभुपाद ने विवाह किया बाद में, अर्थात वो कृष्ण भक्ति थी, भक्तिन थी, लेकिन इतना दिलचस्पी नहीं थी। जब भक्तिसान ठाकुर से दीक्षा लेने की बात हुई बाद में, प्रभुपाद ने कहा मैंने तो दीक्षा ली तुम भी ले लो, मेरी बहन ले रही है। बोले नहीं 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 मुझे इच्छा नहीं ये सब चीज़ों की ना, क्योंकि चाय छोड़नी पड़ेगी, उनको चाय से काफ़ी आसक्ति थी। बाद में जाके प्रभुपाद के ग्रंथों को भी उन्होंने बेच दिया और प्रभुपाद ने कहा तुमको मैं चाहिए कि चाय चाहिए, यू वांट मी और टी। बोले टी मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद तभी फिर घर छोड़कर जो चले गए वापस आए ही नहीं, जब उनकी उम्र कुछ तो 55-56 थी, और वानप्रस्थ बन गए, बाद में सन्यासी बन गए, और वो माता जी की कृपा से हम सबका उद्धार हो गया। ये भगवान का आदेश था जो ऊपरी रूप से प्रभुपाद को भी लीला के अंतर्गत नहीं दिखाई दे रहा था। तो दोनों सही रास्ते हैं, ब्रह्मचारी बनकर या गृहस्थ बनकर। आध्यात्मिक जीवन में वैकुंठ धाम में देखते हैं तो वहां तो कुछ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी है ही नहीं, सभी विवाहबद्ध गृहस्थ ही रहते हैं, विवाहबद्ध यानी नेचुरल गृहस्थ रहते वो। तो वो उदाहरण आता है 15वें अध्याय में 3रे स्कंद में, वो उड़ते हैं विमानों में वहां वैकुंठ जगत में, पति पत्नी और सुंदर उनकी पत्नियां होती है, इसके बावजूद भी वो भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं। न तो तुम्हारे पत्नी का गुणगान करते थे तुम कितनी सुंदर हो वगैरह, भगवान कितने सुंदर हैं, उन्होंने कैसे ये बताया वो बताया, उनकी सेवा ये वो, ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अब एक दूसरे के शरीर के प्रति बिल्कुल वो उस तरह का आकर्षण होता ही नहीं, तो वहां तो है नहीं लेकिन यहाँ है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। तो इसको चुनते समय हो सकता है व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं, सीनियर डिवोटीज है, उनका आश्रय लेना चाहिए, और उनके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। और जो अन्य भक्त हैं उनको भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में कुछ भक्त बहुत ही उत्साह से कभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अगर अगर उनकी इच्छा हुई कि गृहस्थ बने, तो उनको ताने मारना इत्यादि, उनमें गलतियां देखना ये उचित नहीं। या कुछ लोग कहते हैं अरे बेचारा फंस गया, कितना अच्छा था, उड़ रहा था आसमान में, अभी अटक गया जाल में। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे ताने मारते हैं, ब्रह्मचारी अच्छा है गृहस्थ जीवन बुरा है। कुछ लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन कितना अच्छा है, वो ब्रह्मचारी देखो कैसे भिखारी बन गया, अभी देखो कैसे दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। ऐसे बहुत सारे दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को ताने मारते हैं, गालियां देते हैं वगैरह वगैरह, अंदर ही अंदर बाहर जो भी चले, ये सब इमैच्योरिटी का उदाहरण है। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, कि जो द्वैत में रहते हैं रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत, उनको द्वंद्व दिखाई देता है संसार में, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ और ये बहुत बुरा हुआ। और कुछ समय के बाद हो सकता है जो बुरा हुआ कहते ये बहुत अच्छा था, बाद में कहेंगे जो अच्छा था वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, भगवान की आज्ञा के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। सब मनोधर्म ये मानसिक धर्म है, तो ये उचित नहीं है, यही भालो यही मंद, ये अच्छा है ये बुरा है, यही सब भ्रम, ये भ्रम है। अच्छा क्या है, भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा कौन सी करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सब भगवान के आदेशों से, भगवान की इच्छा से, जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे भगवान उसको इंगित करते हैं, भगवान इंडिकेट करते हैं। जैसे भागवत में भगवान कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम किया है ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का आदेश बिल्कुल सुनाई देता है। वो आदेश डायरेक्टली सुनाई दे गुरु के माध्यम से या अन्य भक्तों के माध्यम से, वो सुनाई देगा जरूर, उसमें कुछ भ्रमित होने जैसी जरूर नहीं है। और भ्रमित भी हो गए तो फिर हम उचित भक्तों के पास जाकर उनके आदर्श स्वीकार कर, उनसे सुनकर हम इस सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो हम अपनी दृष्टि से जब तक संसार को देख रहे हैं ये अच्छा है ये बुरा है, उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से जब देखते हैं तो उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। जैसे अपिचेत तो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य, भगवान कहते हैं एक भक्त है मेरा, भक्ति कर रहा है और किसी कारण से थोड़ा इधर उधर माया में उसका चला गया हो, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति को छोड़ता नहीं, थोड़ा कुछ पाप कर्म हो गया, कुछ गलती होगी, भक्ति कर रहा है तो मैं उसको साधु मानता हूं। तो इस तरीके से जो देखे एक व्यक्ति को उसको भी साधु कहेंगे या उसको मध्यम अधिकारी कह सकते हैं। लेकिन कहते नहीं नहीं ये बुरा हुआ, भगवान मानते होंगे उसको साधु, मैं नहीं मानता उसको साधु, ऐसा जो सोचे वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो हमें मध्यम अधिकारी बनना है और उसके लिए जो सब कुछ जरूरी है वो भगवान ने वेद शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा और हमारे आजू बाजू में जो भक्त है उनके द्वारा सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बस इसको अगर ध्यान से अगर हम करते रहे भक्ति के जीवन में तो बराबर पता चलेगा कब क्या करना है, कैसे करना है इत्यादि। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारे पास में आजू बाजू में भक्त है ही जरूर, तो उनको जाके पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ऐसी स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उस तरह से हम अगर अपना जीवन जिए तो बहुत ही आनंद से, बहुत ही शांति से भगवान की भक्ति कर भगवत धाम जा सकते हैं। उसके लिए कोई भी रास्ता हो जो भी उपस्थित है उसके अनुसार, जैसे हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी के जीवन में ब्रह्मचारी बनना, तो जब एक साल पहले की बात है करीबन, हमारे फूफा जी जो अभी नहीं रहे हाल ही में चले गए, तो वो मैं उनसे मिलने बैंगलोर में गया था उनके परिवार से, तो वो कहे कि बेटा अभी कितने साल हुए, मेरे पिताजी जैसे ही मुझे प्रेम करते थे, तो मैंने किसमें ब्रह्मचर्य के रूप में, बोला 18-19 साल हो गए, अरे अभी बहुत हो गया बेटे, अभी जाके तुम विवाह कर लो, हाँ घर में जाओ माता पिता के साथ रहो, विवाह करो, व्यवसाय करो, हाँ अच्छे से माता पिता तुम भी खुश माता पिता भी खुश। मैं उनको समझाया तो कुछ महीने पूर्व हमारे कुछ माता जी का कॉल आया था माँ का, तो वो पूछ रही थी तो कैसे चल रहा है मंदिर, ये भक्त कैसे वो भक्त, तो मैंने बोला वो भक्त वो तो विवाह करके हो गए वो गृहस्थ जीवन जी आ रहे, अरे वो विवाह कर दिए, अरे वो तो इतने सालों से, बोले हाँ रहे वो 18-20 साल, तो फिर बोले वो भक्त, बोले वो भी विवाह कर लिया, बोले वो भी ये सब तुम्हारे मित्र सब चले गए, तो उनको डर लग गया कि ये ना आ जाए वापस। बोले बेटा तुम बहुत अभी उम्र हो गई 42-43, तुम मत आना बहुत झमेला हो जाएगा इस उम्र में वगैरह। तो हमने बताया उनको कि चिंता मत कीजिए आप, लेकिन जो भी है तो हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है हमसे वो हमें भक्त बताएंगे, ना तो फूफा ना बुआ ना माता पिता, जैसे हम 20 साल पूर्व जब ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, बहुत आश्चर्य की बात, लेकिन फिर भी हमारे काफी सारे मित्र जब परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास जाकर बोलते थे कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं ब्रह्मचारी बनने जा रहा हूँ और बन चुका हूँ, तो महाराज कहते थे हमेशा कि मैं नहीं ये सोचता कि मेरे शिष्य ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, मैं देखता हूँ कि वो शुद्ध भक्त बने और इसी जीवन में अपने जीवन को परिपूर्ण कर भगवत धाम चले जाए। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं कि वो ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ, जो भी उनके लिए उचित है वो खुद ही सोचे वगैरह। लेकिन हम जब ब्रह्मचारी बनना चाहते थे तो हमने महाराज को एक खत लिखा था और कहा था कि आपके आशीर्वाद दीजिए, कुछ महीनों के बाद हमारी भी इच्छा है मंदिर में जाके उनसे, मंदिर के भक्तों से हमें बहुत विरह होता है, मंदिर में जाके भक्तों के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उधर ही रहकर। तो बाद में जब ब्रह्मचारी बने थे उनको खत लिखा था, तो महाराज ने एक बहुत अच्छा लेटर लिखा था न्यू वृंदावन से, वेस्ट वर्जीनिया माउंट विले से। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि डेवलपमेंट ऑफ फेथ इज अ वेरी इसेंशियल नीड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एक भक्त के लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि श्रद्धा की विकसन हो। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि एक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जागृत होती है जब वो भगवान के गुणों का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से प्रामाणिकता से, जो डेडिकेटेड डिवोटीज है, क्योंकि मैं बोला था कि ब्रह्मचारियों के रूप में अपने आप को मैं सादर करना चाहता हूँ, हम सेवा करना चाहते हैं ब्रह्मचारियों के बीच में रहकर, तो कहते हैं डेडिकेटेड डिवोटीज के बीच में रहकर भगवान के गुणों का वर्णन बहुत ही प्रामाणिकता से तुम कर सकते हो, प्रभुपाद कहे, इससे श्रद्धा बढ़ती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अनलिमिटेड फॉर्च्यून दैट इज गिवन टू यू। तुम समझने का प्रयास करो कि तुम्हें कितना असीमित भाग्य दिया गया है एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। और तुम्हें यह भाग्य दिया गया है कृष्णा और भक्तों को सेवा करने का। मे श्री राधा गोपीनाथ फॉर एवर ब्लेस यू विद देयर सिंसियर विद देयर कॉजलेस मर्सी। श्री राधा गोपीनाथ आपके ऊपर हमेशा अहेतु की कृपा बरसाए, ऐसे तो ऐसे हम देख सकते हैं कि प्रामाणिक गुरु के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा हमें समझ में आ सकता है कि हमें किस आश्रम में रहना है या कौन से रास्ते को चुनना है, कौन से सेवा को कैसे कहाँ कब किस तरीके से, सब कुछ उपलब्ध है। ये खुद को भी मार्गदर्शन हो सकता है परमात्मा के संपर्क में रहकर या नहीं, तो फिर आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हमने इतने सारे उदाहरणों से देखा, प्रभुपाद या आचार्यगण। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत आराम से रह रहे थे वृंदावन में, उन्होंने वो गीत भी लिखा था, है ना, वो राधा कुंड तट कुंड कुंज कुटीर, वो राधा कुंड के तट पे ही रह रहे थे, स्वानंद सुखद कुंज जो वहां ही है बाजू में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, बोले अरे केदारनाथ बाबू, भक्ति विनोद ठाकुर, आप तो आराम से इधर वृंदावन में जीवन जी रहे हो, उधर मायापुर में क्या होगा, नवद्वीप में, मेरा जन्म स्थान लोगों को पता नहीं है, जाओ तुम वहां जाके प्रचार करना है। तो उनको वृंदावन छोड़ना पड़ा, राधा कुंड जो श्री उपदेशामृत का 10वां 11वां श्लोक बताता है, राधा कुंड पे भजन वो कर रहे थे वो, और इतना अच्छा भजन कर रहे थे, गीत लिखा था और अनेक सारे गीत लिखने वाले थे, वहां से छोड़कर वो वापस आ गए नवद्वीप, और वहां उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ को सब पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वहां सुंदर मंदिर बनाया, और इसके कारण कितने सारे भक्तों को लाभ हो रहा है। तो हमें भगवान की इच्छा भगवान खुद बताएंगे या फिर आचार्यों के द्वारा, जहाँ जैसे यहाँ खुद ब्रह्मा जी बता रहे हैं प्रियव्रत को, या फिर गुरुओं के द्वारा, प्रभुपाद के किताबों के द्वारा, तो इनको पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा। जैसे हाल ही में मैं सुन रहा था परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे किताबों को 3 घंटा रोज पढ़ना चाहिए, हमें दंग रह गए, 1 घंटा बोला था, कुछ लोगों से 2 सुना, अभी 3 कैसे, बोले ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुबह सुनते 1 घंटा तो वो 1, और शाम को अगर भगवद्गीता क्लास होती है 1 घंटे की तो वो 1, और बीच में 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ना चाहिए। ऐसे 3 घंटा रोज हर भक्तों को प्रभुपाद किताब पढ़नी चाहिए, वो पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान मुझसे आज की तारीख में यहाँ इस स्थिति में क्या चाहते हैं, क्या आदेश है, वो समझ में आ सकता है, उसमें कुछ समस्या तो है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? यस, ओके।
हरे कृष्ण ब्रो जी, धन्यवाद बहुत सुंदर क्लास के लिए। ब्रो जी, आपने जैसे बताया कि प्रियव्रत महाराज के केस में उनके सुपीरियर्स ने उनको आके एग्जैक्टली बताया करना क्या है, स्पेशली इस डिसीजन के बारे में, ब्रह्मचारी गृहस्थ का, क्योंकि आपके लिए क्या भला है, दुनिया के लिए क्या भला है। लेकिन आपने वो उदाहरण भी दिया कि बहुत बार हमारे वरिष्ठ लोग जो है हम पे डिसीजन छोड़ते हैं कि आप तो, हम ठीक है शास्त्र सुनते हैं, अलग अलग भक्तों से सुनते हैं, पर बहुत बार ये डिसीजन क्या भला है हमारे लिए, बहुत बार ऐसा अनेक, नॉट ओनली इन केस ऑफ आश्रम या वगैरह, बट काफी सारे फील्ड्स में खुद को डिसीजन लेने का ये दिया जाता है, कैसे समझे हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है या कैसे हो रहा है?
उससे आप आनंदित होंगे, जैसे प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर आप अच्छे से जैसे बताए गए शास्त्रों के अनुसार जप करेंगे तो आप हैप्पी होंगे। जप करने के बाद भी आप हैप्पी नहीं हो रहे, सुखी नहीं हो रहे, यानी आपके जप करने में कुछ तो समस्या है। उसी तरह से आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपको आध्यात्मिक जीवन में उत्साह नहीं बढ़ रहा है, तो यानी आपने जो डिसीजन लिया उसमें जरूर कुछ तो कमी रही होगी। तो ऐसे स्थिति में फिर शास्त्र गुरुवर या उनके पास जाके पूछना होगा कि आपने बताया था, आपने मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ा था, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसे ऐसे किया, एक साल बीता, मैं खुश नहीं हुआ हूँ, उल्टा ये चीज हो गई वगैरह, ऐसे प्रामाणिकता से बताएंगे तो बताएंगे कहाँ क्या गलती हो गई वगैरह। लेकिन ये तो बहुत तय है, अगर भक्ति आप बराबर कर रहे हैं तो आपको डिसीजन भगवान बताएंगे और डिसीजन से आप बहुत आनंदी रहेंगे, क्योंकि आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ता ही जाएगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर क्षण आपको अमृत का आस्वादन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार या 12 साल में एक बार वो कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ जाके थोड़ा अमृत आस्वादन, नहीं, हर क्षण प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण कुंभ अमृत का। सुसुखम करतुम अव्ययम, स्वादु स्वादु पदे पदे, अगर ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो आप बहुत ही आनंदी रहेंगे, नहीं तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर भगवान की ही योजना है, अगर कोई व्यक्ति इसमें आग के पास में जाए, बहुत बड़ी आग लगी है पास में जाए, तो उसके दहकने के कारण व्यक्ति पीछे हट जाता है, आगे जा नहीं सकता, और रख दिया तो जल जाएगा त्वचा चमड़ी, है ना। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये बहुत अच्छा तरकीब है भगवान की, जिसके द्वारा हम समझे कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है आग, मैं इसको डील नहीं कर सकता। अगर वो है ही नहीं, कोई अग्नि में हाथ डाले, चमड़ी जल रही है लेकिन उसको कुछ ताप हो ही नहीं रहा है, तो पूरा जल जाएगा हाथ। तो ये भगवान की योजना है कि जब हम नियम तोड़ते हैं, बाहर के नियम हो, भगवान सरकार के नियम हो, या फिर प्रकृति के नियम हो, या भक्ति के अंतर्गत भगवान की भक्ति युक्त जो नियम है, जब भी हम उसके अनुसार नहीं जा रहे तो आप आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे, आनंद में ह्रास होता जाएगा, कमी होती जाएगी। लेकिन जब बराबर जा रहे हैं तो आनंद ही आनंद, बहुत आनंदी हो जाएंगे आप। ठीक है, इनका
Here, I'll ask in English. Here, there is no confusion in terms of understanding of Priyavrat. So similarly, spending some time in Brahmacharya Ashram, reading books of Prabhupada, we also understand something. And when like person like Brahma and Narad Muni, they are both well in line with the Lord. So similarly, if some personality gets two different inputs from two different people, in terms of ashram or in terms of other details. So what are the principles to decide? Like for example, you told about for brahmachari, you know, swadisht vanjan khane ka jarurat hai, to aap wife ke paas jao. Abhi idhar swadisht vanjan guru hi de rahe hai, idhar dusri jane ka jarurat nahi. So this is the only one criteria of eating, or there are, what are other criteria by which we can think of?
Psychophysical.
That's what I am
brahmachari grahastha ka jivan hai, वो बताया गया है क्लियरली साइकोफिजिकल है, वो शारीरिक स्तर पे है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, इस ये भक्ति से संबंधित नहीं है। नहीं होता तो फिर रूप गोस्वामी पाद उसको 64 भक्ति के अंगों में डालते थे फिर, कि ब्रह्मचारी के रूप में ऐसे सेवा करो, गृहस्थ के रूप में ऐसे सेवा, नहीं, सबके लिए सेम भक्ति के नियम है। भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवत धाम जाया जा सकता है, न कि ब्रह्मचर्य और ग्रस्त। तो जिसका साइकोफिजिकल जैसे नेचर है उसके अनुसार वो चुने। जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं बंबई से भी जा सकता हूँ, जो ट्रेन है उज्जैन से होके जा सकती है, या फिर मैं पुणे से भी मध्य प्रदेश से होके जा सकता हूँ। तो ये दो तरीके हैं। कोई सोचे कि नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊँ नहीं, मैं तो प्लेन से जाऊँगा, तो ये भी चलेगा। तो लेकिन ये जाना दिल्ली है, और कैसे जाए उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, जो भी स्थिति है उसके अनुसार। जैसे भी लॉकडाउन है, प्लेन चल ही नहीं रहे, तो हो सकता है कोई ट्रेन से जाए, ट्रेन भी नहीं चल रहे, हो सकता है पर्सनल व्हीकल से चले जाए। तो समय के अनुसार देखना चाहिए, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। तो अपना कैसे शारीरिक घड़न है, मानसिक घड़न है, उसके अनुसार नेचुरली व्यक्ति उस पद पर अग्रसर होता है, और वो स्वाभाविक रूप से जब अग्रसर हो रहा है तो वो आनंद ही आनंद महसूस करता है। वो कभी ऐसे ऐसा नहीं अंदर ही अंदर उसको जैसे कोई खा रहा है कुछ चीज़।
आनंद के बारे में, दैट इज अ वेरी वंडरफुल टेस्ट। सो माय क्वेश्चन इज, इफ टू डिफरेंट पीपल, वेरी ग्रेट सोल्स आर टेलिंग टू डिफरेंट थिंग्स, How do we decide? That's what is Priyavrata's case here.
तो वो आपको बताएंगे भगवान
ही. What is the will of the Lord in this situation where Priyavrata knows the scriptures?
ठीक है, तो आप भक्ति को अच्छे से कीजिए, तो भगवान आपको समय से बता देंगे. अगर हमने पहले से ही बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि बचपन में हमारे माता पिता ने गर्भाधान संस्कार कर चुके हैं, 5 साल की उम्र से हम ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक भक्ति को स्वीकार किए, फिर उसके बाद ऐसे जीवन जिए, तो वो तो स्पष्ट हो जाता था. लेकिन अभी हमारा ऐसा जीवन नहीं रहा, और ना तो भक्ति में आने के बाद उतनी गाड़ी रही. तो अभी अगर भक्ति को अगर हम अच्छे से करेंगे तो भगवान इंडिकेट, इंगित कर देंगे कि क्या है. उसके लिए थोड़ा समय की भी जरूरत है. इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य. जब उत्साह से जा रहे भक्ति में और थोड़ा निश्चय कम पड़ रहा है तो हम थोड़े हिलडुल जाते हैं. तो ऐसे स्थिति में धैर्य को भी इस्तेमाल करना चाहिए. थोड़ा समय से पता चल जाएगा कि क्या उचित है. और उसके लिए वो उचित है, इसके लिए वो उचित है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत हो गया, ये अच्छा हो गया. नहीं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या भक्ति में प्रगति के लिए जरूरत है, वो देखना चाहिए. न तो किसी दूसरे के जीवन को देखना चाहिए, इसका गलत हो गया, इसका अच्छा हो गया. नहीं, भगवान के आदेश से ही संसार चल रहा है. यहाँ तक कि परसों, कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि इतने सारे लोग गर्भपात कर रहे हैं, तो क्या भगवान के आदेश से चल रहे हैं? भगवान नहीं कह रहे कि गर्भपात करो, लेकिन वो पापी लोग हैं और जो भी है उसके कारण वो चल रहे हैं. तो हम जाके उधर नारा नहीं लगा सकते कि ये रोको, ये करो. नहीं, अर्थात हमें प्रचार करना है. प्रचार एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे लोगों को पता चले कि ये सब, भक्ति में जब रुचि बढ़ जाएगी तो ये गर्भपात करना छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वगैरह ये सब गलत है, व्यक्ति सब छोड़कर भक्ति करता रहेगा और ये गर्भपात वगैरह सब अपने आप कम हो जाएगा. लेकिन जो चल रहा है अभी, इतनी सारी बुरी चीज़ें, बुराई है, उसको आप ये नहीं देख सकते हताश होकर, क्रोधित होकर, यही पाँव पीटता पीटते पीटते नहीं चलेगा. क्योंकि आपको पता होना चाहिए भगवान ने सैंक्शन किया है वो. पूरा संसार चलता है भगवान की आज्ञा से. प्रभुपाद कहे ये जो चेतना है ये कृष्ण भावना है. द होल वर्ल्ड इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो हम नाहक ही उसमें अपना मुंह डालकर नहीं ये करना है. पहले पता करवाओ कि आप भगवान चाहते हैं कि आपसे उधर जाके नारे लगाना वगैरह, ये हमारे ऊपर वाले गुरुओं ने आदेश दिया है या नहीं दिया है. जैसे हमारे कितने सारे भक्त आज की स्थिति में भी बाहर जाकर खिचड़ी वगैरह प्रसाद बांट रहे, तो भगवान के आदेश से चल रहा है, इसलिए अच्छे से वो प्रचार प्रसार भी हो रहा है और फिर लोगों को प्रसाद भी मिल रहा है वगैरह ऐसी स्थिति में भी. और हम में से कोई उत्साही होकर बाहर जाना चाहे, हमें बोला नहीं आप दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते, प्रभु जी है इधर ही, तो हमें ये मानना चाहिए भगवान का मेरे लिए ये आदेश है कि मैं ये दरवाजे के बाहर ना जाऊँ. लेकिन उस भक्तों को फिर हम बोलेंगे उसको कैसे भेज रहे, उसको भगवान आदेश है कि तुम जाओ. इस्कॉन का प्रचार जो ब्रह्मचारीगण अभी नहीं कर पा रहे, वो गृहस्थ लोग हमारे श्वेदी प्रभु, नटवर प्रभु अच्छे से कर रहे. बाद में जब लॉकडाउन खुल जाए तो शायद ब्रह्मचारी बाहर जाके नाम संकीर्तन, स्ट्रीट संकीर्तन करके वो भी प्रचार कर सकते. तो ऐसे एक स्थिति में क्या भगवान का आदेश है मेरे लिए, ये समझना हमें परमात्मा ही बताएंगे. नहीं तो फिर बाहर अन्य बाजू में बहुत सारे भक्त हैं जो बता देंगे. बहुत ही स्वाभाविक है. जैसे कल ही हमारा प्रवचन उधर चल रहा था तो जोर से थोड़ा कीर्तन हुआ, एक भक्त को थोड़ी बाधा हुई, तो हमारे सर्वक्षण प्रभु ने आके बताया कि थोड़ा आवाज कम कीजिए. तो भगवान का आदेश है कि थोड़ा कीर्तन करो, लेकिन धीमे. ऐसा नहीं कि कीर्तन बंद करो, धीमे स्वर में करो. तो भगवान का आदेश है. आया किनके द्वारा? हमारे सर्वलक्षण प्रभु के द्वारा. हम बोलेंगे नहीं ये पता नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए. अगर हम देखेंगे पूरा संसार चल रहा है भगवान की इच्छा से, तो हम देखेंगे सर्वलक्षण प्रभु के द्वारा मुझे भगवान आदेश दे रहे कि थोड़ा कीर्तन का जो साउंड वॉल्यूम है कम करो, कीर्तन करो या फिर अन्य स्थान पे करो. ठीक है, ये थोड़ा सा अगर हम श्रद्धा है, सबमिशन है, तो बहुत आसानी से समझ में आ सकता है. नहीं सबमिशन तो हम पूरे नारे लगाएंगे, डेरे लगाएंगे, फिर भी व्यथित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, फिर समस्या आ जाती. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी.